एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। तो फिर ना कहना हम थे पापी हम नादान। संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय में बसा ले। संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय में बसा ले। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे जब आप उसके वचनों को सुनते हैं। आइए हम उससे पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता। हम तुझे इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों को तो आशीष दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं को तो आशीष दे पिता, और मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरा वचन तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारे श्रोताओं, आज का संवाद का शीर्षक है मसीह में बढ़ना। जन्म खुशी का पल है, एक बीज अंकुरित होता है और पहली दो पत्तियों का प्रकट होना मालिक को आनंदित कर देता है। एक बच्चा जन्म लेता है और उसकी पहली चीख संसार को घोषणा करती है कि यहाँ एक नया जीवन है जिसका ध्यान देना है। माँ अपने सारे दर्द को भूल जाती है और शेष परिवार के साथ आनंद एवं उत्सव में सम्मिलित हो जाती है। एक राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए पैदा होता है और सारे लोग अपने नए आनंद के प्रतीकों को लहराते हुए सड़कों एवं शहर के चौराहे को भर देते हैं। परंतु कल्पना करें, वे दो पत्तियां यदि चार में नहीं बदलती है बल्कि वैसे ही रह जाती है या लुप्त हो जाती है, एक वर्ष पश्चात वह छोटा बच्चा ना तो मुस्कुराता है ना ही पहला कदम उठाता है बल्कि संसार में प्रवेश होने की सहजता में थमा रहता है। वह नया स्वतंत्र राष्ट्र कुछ समय के लिए डर, यातना और अधीनता की जेल बनकर सिमट जाता है। माली का आनंद, माँ का परमानंद और एक स्वतंत्रता भरे भविष्य की प्रतिज्ञा निराशा, दुख एवं मातम में बदल जाते हैं। विकास निरंतर नित्य परिपक्व एवं फलदायक विकास जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बिना जन्म का कोई अर्थ या उद्देश्य या नियति नहीं है। विकास करना जीवन का एक अविभाज्य समीकरण है। दोनों शारीरिक एवं आध्यात्मिक, शारीरिक विकास, उचित पोषण, पर्यावरण, पालन पोषण, व्यायाम, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन की मांग करता है। परंतु यहाँ जो विषय विचाराधीन है वह है आत्मिक विकास। हम मसीह में कैसे बढ़ते हैं एवं मसीह के रूप में कैसे परिपक्व होते हैं, आत्मिक विकास के परिणाम चिन्ह क्या हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और इसके बाद भी। संवत मसीह जीवन के विषय में सबसे बुनियादी एवं अनूठा सिद्धांत यह है कि यह मृत्यु से आरंभ होता है। वास्तव में मृत्यु की दो घटनाओं के साथ। पहली, क्रूस पर यीशु की मृत्यु हमारे नए जीवन को संवत बनाती है, शैतान के प्रभुत्व से मुक्त, कुलुसियों 1:13-14, पाप की निंदा से मुक्त, रोमियो 8:1, पाप के दंड मृत्यु से मुक्त, रोमियो 6:23, और यह परमेश्वर एवं मनुष्यों के साथ मेल मिलाप लाती है। दूसरी, स्वयं की मृत्यु हमारे लिए उस जीवन को अपनाने की संभावना बनाती है जिसे मसीह प्रदान करता है। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप हम जीवन की नवीनता में चलते हैं। परमेश्वर के उद्धार की योजना में क्रूस केंद्र है। उसके बिना शैतान एवं उसकी राक्षस शक्तियां पराजित नहीं की जा सकती थी। पाप की समस्या हल नहीं होती एवं मृत्यु को कुचला नहीं जाता। प्रेरित हमें बताता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, 1 यूहन्ना 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बाइबल का सबसे पसंदीदा अनुच्छेद कहता है। यदि परमेश्वर के प्रेम ने उद्धार की योजना की कल्पना की व शुरू की, तो इस योजना का कार्यान्वयन इस अनुच्छेद के दूसरे भाग में समझाया गया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के उपहार की विशेषता इसमें नहीं थी कि उसने अपना पुत्र दे दिया, परंतु यह कि उसने उसे हमारे पापों के लिए मरने के लिए दे दिया। क्रूस के बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी, ना ही अनंत जीवन और ना ही शैतान के ऊपर विजय हो सकती थी। क्रूस पर अपनी मृत्यु द्वारा मसीह ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की। जंगल की उग्र परीक्षा से लेकर गतसमनी की यातना तक शैतान ने क्रूरतापूर्वक परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध आक्रमण किया। उसकी इच्छा को कमजोर करने के लिए, उसको राह से डगमगाने के लिए, उसे अपने पिता पर अविश्वास करने के लिए एवं उस पर दबाव डालने के लिए, ताकि वह मानवता के पाप के प्रतिनिधिक बलिदान का कड़वा प्याला पीने का राह से हट जाए। क्रूस अंतिम आक्रमण था। वहां परमेश्वर के विरुद्ध उस महान संघर्ष को उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए शैतान अपने स्वर्गदूतों के साथ मानव रूप में उपस्थित था, इस आशा में कि मसीह अब भी क्रूस से नीचे आ जाएगा और परमेश्वर अपने पुत्र को पाप के लिए बलिदान के रूप में देने और छुटकारे के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहेगा, 3:16। परंतु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर शैतान की शक्तियों को कुचल डाला। उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निशस्त्रीकृत कर दिया और इसमें उन पर विजय होकर उनकी सार्वजनिक तमाशा बना दिया, 2:15। क्रूस पर युद्ध जीत लिया गया था। उसके मसीह के दाहिने हाथ एवं उसके पवित्र हाथ ने उसे विजय दिलाई। एक विजेता की तरह उसने अपना पताका अनंत शिखर पर स्थापित किया। संपूर्ण स्वर्ग उद्धारकर्ता की जीत पर प्रफुल्लित हुआ। शैतान हार गया था और जानता था कि उसका राज्य छिन गया है। कुलिसियों में प्रेरित का सजीव विवरण उल्लेखनीय है। 1, मसीह ने बुराई के प्रधानताओं और अधिकारियों को निशस्त्र किया। निशस्त्र का यूनानी मूल अर्थ है छीन लेना। क्रूस के कारण शैतान की परमेश्वर के लोगों पर से संपूर्ण बुरी शक्तियों को छीन लिया गया है, जब तक वे परमेश्वर के लोग अपना विश्वास उस पर रखें जिसने क्रूस पर वह विजय दिलाई। 2, क्रूस ने शैतान व उसके साथियों को ब्राह्मण के समक्ष एक सार्वजनिक तमाशा बना दिया। वह जिसने एक समय परम प्रधान के तुल्य होने की डिंग डाकी थी, यशया 14:14, अब उसे शर्म और हार का लौकिक तमाशा बना दिया गया। अब बुराई की पकड़ उन विश्वासियों के ऊपर नहीं है जो अंधकार के राज्य से निकलकर प्रकाश के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। कुलुसियों 1:13। तीसरा, क्रूस ने शैतान, पाप एवं मृत्यु के ऊपर अंतिम व विश्वस्तरीय विजय को सुनिश्चित कर दिया है। इस प्रकार मसीह का क्रूस बुराई के ऊपर परमेश्वर की जीत का साधन बन गया है। पहला, एक साधन जिसके द्वारा अपराधों की क्षमा संभव है, कुलुसियों 2:13। दूसरा, विश्वव्यापी मेल मिलाप का ब्रह्मांडीय प्रदर्शन, दूसरा कुरिन्थियों 5:19। तीसरा, मसीह में बढ़ने एवं विजयी जीवन व्यतीत करने की वर्तमान संभावनाओं का एक आश्वासन, जिसके द्वारा पाप हमारे मनों या शरीर में राज नहीं करेगा, रोमियों 6:12। एवं परमेश्वर के बेटे व बेटियों के रूप में दर्जा, रोमियों 8:14 कहता है। चौथा, एक विश्वस्तरीय निश्चितता कि यह पाप का संसार, जो किसी समय शैतान का अधिकृत राज्य था, बुराई की शक्ति व उपस्थिति से शुद्ध कर दिया जाएगा, प्रकाशित वाक्य 21:1 कहता है। उद्धार एवं विजय की सीढ़ी के प्रत्येक कदम पर हम स्वयं मसीह की भविष्यवाणी को पूर्ण होते देखते हैं। मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देखा, यीशु मसीह ने कहा, लूका 10:18 में यह रिकॉर्ड किया गया है। क्रूस का मसीह पाप की समस्या के लिए परमेश्वर के छुटकारे का कार्य है। ऐसा ना हो कि हम इस सत्य को भूल जाएं। यीशु ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि उसका लहू बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाना है, मती 26:28। उस लहू का बहाया जाना उद्धार के अनुभव एवं सराहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पाप ही थे जिसने परमेश्वर को क्रूस तक जाने के लिए बाध्य किया। यीशु की एक बार सभी के लिए, हम इसे देख सकते हैं रोमियों 6:10 और इब्रानियों 7:27 तथा इब्रानियों 10:10 में। बलिदानी एवं स्थानापन मृत्यु के स्वभाव की पुष्टि व घोषणा करने से कोई बच नहीं सकता है। हम क्रूस के मसीह द्वारा बचाए गए। मसीह के साथ वैसा व्यवहार किया गया जिसके हम लायक हैं, ताकि हमारे साथ वैसा व्यवहार किया जाए जिसके लायक वह है। उसे हमारे पापों के लिए दोषी ठहराया गया जिसमें उसका कोई भाग नहीं था, ताकि हम उसकी धार्मिकता के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। यीशु का लहू तब पाप की क्षमा का आश्वासन देता है एवं विकास की नवीनता के लिए बीज बोता है। मसीही जीवन में इस नवीनता एवं विकास के पहलुओं में से प्रथम है मेल मिलाप, दूसरा कुरिन्थियों 5:19। परमेश्वर से मेल मिलाप तुरंत ही छुटकारे के विकास की प्रक्रिया के दूसरे चरण को खोल देता है, सह मनुष्यों के साथ हमारा मेल मिलाप। क्रूस विभिन्न लोगों के बीच भेद नहीं रखा, इसने सभी को मेल मिलाप का दिव्य मार्ग प्रदान किया। क्रूस के तले जमीन समतल है। क्रूस ने शैतान एवं पाप के ऊपर विजय का आरंभ किया और परिणाम स्वरूप मसीह में नया जीवन लाया। मसीह विकास एवं नवीनता का दूसरा पहलू है पुराने स्वयं की मृत्यु। एक मसीह के नए जीवन के इस मौलिक पहलू को जाने बिना आप नया नियम नहीं पढ़ सकते हैं। जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो आप इसे पाएंगे ही और जानेंगे। गलातियों 2:20-21 में आप पढ़ते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। या यदि आप रोमियो 6:6-11 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां लिखा है कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु यीशु मसीह में जीवित समझो। या यीशु द्वारा नए जीवन के सिद्धांत के वर्णन को पढ़ें जो यूहन्ना 12:24 में लिखा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मसीह जीवन इस प्रकार जन्म के साथ आरंभ नहीं होता है, यह मृत्यु के साथ आरंभ होता है। जब तक स्वयं नहीं मरता, जब तक स्वयं का क्रूसारोपण नहीं होता, तब तक कोई शुरुआत नहीं होती। स्वयं की एक मौलिक विचार पूर्वक व पूर्ण शल्य चिकित्सा होनी चाहिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। एक मसीही जीवन पुराने जीवन का संशोधन या सुधार नहीं है, परंतु स्वभाव का रूपांतरण है। स्वयं एवं पाप की मृत्यु है और एक पूर्ण रूप से नया जीवन है। यह बदलाव केवल पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कार्य द्वारा ही लाया जा सकता है और बपतिस्मा प्रतीकात्मक रूप से नए जीवन का द्वार खोलता है और हमें मसीह में बढ़ने के लिए कहता है। जो कोई यीशु को उद्धारकर्ता एवं स्वामी के रूप में स्वीकार करता है उसके हृदय में पाप के लिए कोई जगह नहीं है। पौलुस ने कहा, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मसीह में बढ़ने का तीसरा पहलू है नए जीवन को जीना। मसीही जीवन की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उधार परमेश्वर के अनुग्रह का मुफ्त उपहार है। यही कहानी का अंत है। हाँ, अनुग्रह मुफ्त है, परंतु अनुग्रह की कीमत परमेश्वर ने अपने पुत्र के जीवन से चुकाई। मुफ्त अनुग्रह का अर्थ सस्ता अनुग्रह नहीं है। सस्ते अनुग्रह का यीशु की बुलाहट से कोई लेना देना नहीं है। यीशु ने जोर देकर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। 1 कुरिन्थियों 15:10। पौलुस आगे कहता है कि यह अनुग्रह उसे व्यर्थ में नहीं दिया गया या खालीपन के लिए नहीं, परंतु फल लाने के लिए मिला। पौलुस यह भी कहता है कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। 1 कुरिन्थियों 2:5। और यह विश्वास फल लाता है। इस प्रकार मसीह में बढ़ना परिपक्वता में बढ़ना है ताकि दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की इच्छा को प्रतिबिंबित करें व मसीह की राह में चलें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र महान परमेश्वर पिता, तो अति दयालु है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमारे लिए उपाय रचा है कि हम यीशु मसीह को अपनाएं और तेरा अनुग्रह को प्राप्त करें और नया जीवन पाए। पिता हम सबों को तो अपने पास बुला, तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर दे ताकि हम तेरे नए रास्ता में चल सके। मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, हरेक को जो तेरे वचनों को सुनते हैं सुन रहे हैं उनको तू बहुतायत से आशीष दे और तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। हम सब तुझ में समर्पित होते हैं पिता, हमें नया जीवन दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमें एक सफल और विजयी जीवन प्रदान कर ताकि हम तेरे संग संग रहे और तेरे स्वर्ग राज में पाए जाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनक ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।